एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल अपनी आत्मकथा माई ईयर्स विद इंडियन एयरफोर्स में लिखते हैं कि मेरी याददाश्त में दो तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हैं। एक तो 3 दिसंबर 1939, जिस दिन ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ी थी, और दूसरी 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तानी युद्धक विमानों ने भारत पर हमला किया था। इस पूरे 14 दिनों के दौरान एयर चीफ मार्शल का सुबह सुबह पहला काम होता अपने स्टाफ ऑफिसर से पूछना कि पिछले दिन कितने भारतीय पायलट हमले पर गए और उनमें से कितने सुरक्षित वापस लौटे। बाद में उनकी पत्नी इला लाल ने लिखा कि इस दौरान उनका रोज 1 पाउंड वजन कम हुआ और 14 दिन की लड़ाई खत्म होते होते वो ग्लैमरस दिखाई देने लगे। कई सालों तक पीसी लाल के एडीसी रहे विंग कमांडर धीरेंद्र जाफा याद करते हैं।
जहां तक एयर वॉरफेयर का सवाल है, पूरे आइडियाज जितने भी थे वो एयर चीफ मार्शल पीसी लाल के पर्सनल आइडियाज थे, जिनको उन्होंने और कमांडर से मिलकर उनसे कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस करने के बाद उनको उन्होंने बिल्कुल रिफाइन किया था अपने आइडियाज को। वो सुबह से लंच टाइम तक तो अपने ऑफिस में काम करते थे, देखते थे भारत सरकार से अगर उनको जाना है, वहाँ सेक्रेटरीज वगैरह से मिलना है, डिफेंस मिनिस्टर से मिलना है, वो सब देखते थे। हर तीसरे पहर को वो लंच के बाद 2 बजे अपना जहाज लेकर किसी न किसी एयरबेस पे पहुंच जाते थे और सारा आफ्टरनून उस एयरबेस पर बिताते थे, वहाँ की फैसिलिटीज देखने के लिए, वहाँ के कमांडर से डिस्कस करने के लिए कि किस चीज़ की कमी है, क्या और मदद चाहिए क्या। ये सब ऐसा पर्सनलाइज वो था, हर एक को उसकी ज़रूरत की चीज़ें फौरन मुहैया कराते थे वो, और दूसरे एक पर्सनल कॉन्टेक्ट से ऐसा मोटिवेशन पैदा कर देते थे वो स्टेशन कमांडर्स और स्क्वाड्रन कमांडर्स के अंदर कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी।
पीसी लाल हमेशा से एक अनुशासित जीवन जीने के आदी थे और पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे। पीसी लाल के बेटे रोबी लाल बताते हैं।
पढ़ने के शौकीन थे, घर पे अभी भी हैं उनकी किताबें, फिलॉसफी पे हैं, हिस्ट्री पे हैं, वॉर पे हैं, और एगाथा क्रिस्टी, पेरी मेसन, वो सब हैं। एक किताब थी द वंडर दैट वाज इंडिया, एएल बैशम की, तो उसको लेके उन्होंने अंदर ही अपने आप लिखा हुआ था एंड विल बी अगेन। उनके सबसे करीबी दोस्त थे एमाशन मीनू मेहरबान इंजीनियर, वो थे एमाशन शिवदेव सिंह, बाद में बने एयर चीफ मार्शल लतीफ, वो आते थे। लोगों को पता नहीं कि वो खेल में काफ़ी रुचि रखते थे, यहाँ तक कि पिताजी हॉकी के कमेंटेटर थे, नील बत्रा एक होते थे कमेंटेटर, पिताजी उनके साथ करते थे, तो हॉकी का उनका काफ़ी शौक था, वो रोइंग में इंटरेस्टेड थे।
एयरफोर्स में उनकी गिनती एक चिंतनशील अफसरों में होती थी और उनकी जैसी बौद्धिक क्षमता बहुत कम लोगों में थी। मैंने पीसी लाल को निकट से जानने वाले और बाद में उप वायुसेना अध्यक्ष बने एयर मार्शल सतीश गोविंद इनामदार से पूछा कि आपकी नज़र में एयर चीफ मार्शल की शख्सियत किस तरह की थी।
अद्वितीय, एक ही शब्द ज़हन में आता है, लाइक शेक्सपियर सेड, हियर वाज अ मैन, वेयर कम्स अनदर, दैट फिटेड पीसी लाल टू द टी। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बोल चाल, उनका ज्ञान, उनका इल्म, हर चीज़ में इतना सारा इल्म एक आदमी इकट्ठा कर सकता है एक लाइफ टाइम, एक हयात में, वॉज अनथिंकेबल। और बड़े शालीन थे बात करने में, और क्या एक्सप्रेशन पाया था उस आदमी ने अंग्रेज़ी में, इतनी बेहतरीन अंग्रेज़ी बोलते थे वो, वैसा डिक्शन, वैसी लैंग्वेज मैंने अभी तक तो किसी से सुनी नहीं एयरफोर्स में। गजब का विजन था उनका, स्वीप ऑफ थॉट, उनका रिकॉल ऑफ हिस्ट्री, टू सी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, रेयर एबिलिटी टू कोरिलेट फैक्ट्स इन अ ह्यूज जिग्सॉ, पिक अप द राइट पीसेस एंड फॉर्म अ स्मॉल पिक्चर। आई नेवर सीन दैट एनीबडी एल्स डू इट।
पीसी लाल की खुशवंत सिंह से गहरी दोस्ती थी। दोनों न सिर्फ मॉडर्न स्कूल में साथ साथ पढ़े, बल्कि लंदन के किंग्स कॉलेज और इंस ऑफ कोर्ट में भी उनका साथ रहा। खुशवंत अपनी किताब मोर मैलिशियस गॉसिप में लिखते हैं।
प्रताप 6 साल का था जब वो मॉडर्न स्कूल में मेरी क्लास में पढ़ने आया। उसके बाद हम 60 साल तक दोस्त रहे। हम अपनी छुट्टियां साथ बिताते थे, हालांकि वो मेरा हमउम्र था, लेकिन लोग मुझे उसका पिता समझते थे, और वो भी लोगों के सामने जानबूझकर मुझे पॉप कहकर पुकारता था। हम दोनों एक ही लड़की पर डोरे डाल रहे थे। जब उस लड़की से मेरी शादी हुई तो उसके लाए दहेज में बहुत बड़ा हिस्सा उन खतों का भी था जो प्रताप ने उसे लिखे थे। उन खतों में मेरी खूब तफरीह लेते हुए खिल्ली उड़ाई गई थी। बाद में मैं अक्सर उन खतों को जोर जोर से पढ़कर प्रताप को तंग किया करता था।
1965 की लड़ाई के ठीक उलट 1971 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना का पाकिस्तानी वायुसेना पर पूरा दबदबा था। क्या एयर चीफ मार्शल पीसी लाल भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन से संतुष्ट थे या उनकी नजर में भारतीय वायुसेना और बेहतर कर सकती थी?
दोनों चीज कहते थे वो, हमने जो किया बहुत अच्छा किया बट हम इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते थे। वो कहते हैं अगर हम इसको हाइंडसाइट में देखें इस वॉर को, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम शार्पन कर सकते हैं, इनको ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अगर यही चीज हमें दूसरी बार करनी पड़ी, अगर हम वो गलतियाँ नहीं दोहराते हैं और जो किया तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं, तो हमने जो अब की बार किया है उसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगली बार। हम ऑर्गेनाइजेशन उस समय बहुत वीक थी, सप्लाई सिस्टम्स वीक थे, हमारी ट्रेनिंग में कभी खामियाँ थी, वेपन सिस्टम्स बहुत खामियाँ थी। वो सब अगर हम अलग 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 छांट के निकालते जाते हैं तो इन कमियों से, इस एनालिसिस में, इस फिल्टरिंग में से जो एयरफोर्स उभरेगी वो आज की एयरफोर्स से 10 गुना बेहतर होगी।
जब ये लगने लगा कि 1971 का युद्ध होकर ही रहेगा तो पीसी लाल के एडीसी धीरेन्द्र जाफा ने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी स्क्वाड्रन को ज्वाइन कर युद्ध में भाग लेना चाहेंगे।
कि मेरा मन तो था ही बिल्कुल बना हुआ कि साहब सारी उम्र काट दी है फाइटर पायलट अपने को कहते हुए, और जब फाइटिंग हो तो पायलट साहब वहाँ से नदारद हो। तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे पर्सनल बात करने का मौका केवल एक मिलता था, वो था जब लिफ्ट में ऊपर उनको लाते थे या उनको नीचे ले जाते थे कहीं जाने के लिए, तो वो लिफ्ट का जो समय होता था ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक का, जैसे ही लिफ्ट बंद हुई ग्राउंड फ्लोर पर, मैंने हिम्मत जुटा के उनसे कहा सर अब लड़ाई तो शुरू होने वाली है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा घूर कर, तो बोले तो, मैंने कहा सर मैं सोच रहा था कि अपने स्क्वाड्रन में वापस जाने का। उनका जवाब था कि क्या ये जॉब महत्वपूर्ण नहीं है लड़ाई के लिए? तो मैं चुप रह गया, मैंने कहा मैं क्या कहूँ इनसे। तो मगर दो दिन के बाद मुझे फिर मौका मिल गया, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ अपने स्क्वाड्रन वापस जाने के लिए, क्योंकि लड़ाई अब किसी दिन भी शुरू हो सकती है। तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों? तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा सर जिंदगी भर तो मैंने अपने जूनियर्स को और अपने साथियों को ये कहा है कि जब मौका आए तो देश के लिए जान देनी पड़ेगी भाई, और जब जान देने का मौका आया है तब मैं आपके ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पी रहा होऊंगा और वो लोग वहाँ मर रहे होंगे सर, इसके बाद की ज़िंदगी मुझे बहुत शर्मिंदा रहना पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो मेरी तरफ देखते रहे, कुछ नहीं बोले। उसके आधे घंटे के बाद जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, उन्होंने इंटरकॉम पर मुझे कॉल किया और मुझसे एक ही सवाल पूछा, आज आफ्टरनून का प्रोग्राम कहाँ जाने का है? मैंने कहा सर पठानकोट। तो बोले वो चेंज कर दो, मैं आदमपुर जाऊँगा आज आफ्टरनून। फिर बोले और बाय द वे तुम्हारा स्क्वाड्रन आदमपुर में ही है ना? मैंने कहा जी हाँ सर। उनका ठीक है तो आप भी अपना बैग पैक कर लीजिए, मैं आपको वहाँ छोड़ाऊंगा। मुझे 20 मिनट मिले थे कि अपने घर भागूं और अपनी फ्लाइंग किट और अपने 2-4 कपड़े जल्दी से पैक करूं, फैमिली को बाय बाय करूं और वापस आ जाऊं यहाँ। तो 20 मिनट खत्म करके हम मौजूद थे उनके ऑफिस में और चल दिए।
दिलचस्प बात ये थी कि 1971 के समय उनके पाकिस्तानी वायुसेना के समकक्ष दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके साथ बर्मा के मोर्चे पर लड़ चुके थे और दोनों को अंदाजा था कि खास परिस्थितियों में उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी।
अहम लोग थे वहाँ के जो हुक्मरान थे एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो लाल साहब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कलीग्स थे, एयर मार्शल नूर खान जो चीफ थे, इन दोनों ने कंधा से कंधा मिलाकर वर्ल्ड वॉर टू में लड़ाई की है अंग्रेजों के साथ, जापानीज के अगेंस्ट। नूर खान साहब जो थे चीफ मार्शल नूर खान पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो तो लाल साहब के फ्लाइट कमांडर थे 7th स्क्वाड्रन, जिसमें मैं जिसको मैंने कमांड किया उस 7th स्क्वाड्रन में इन बर्मा, एक ही तंबू में दोनों बैठ के काम किया उन्होंने, एक सीओ थे एक फ्लाइट कमांडर थे। और दूसरे दिन कुछ साल के बाद 47 आ गया तो नूर खान साहब वहाँ चले गए, लाल साहब यहाँ रह गए, लाल साहब यहाँ चीफ बन गए, नूर खान वहाँ चीफ बन गए। बेसिक स्टॉक तो वही है फजल साहब। हाँ उनके पास जहाज 65 में बहुत अच्छे जहाज थे उनके पास, सेबर था उनके पास, हमारे बहुत पुराने जहाज थे हमारे पास, वैम्पायर्स थे, तूफानीज थे, मिस्टर्स भी थे, हंटर्स भी थे, बट सेबर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरोप्लेन। उनकी ट्रेनिंग सब अमेरिका में होती थी। वो क्या सोचती थी इनके बारे में, उन लोगों के बारे में, बारीकी से तो मुझे पता नहीं, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, आई कैन ओनली गेस, ही डिडंट रेट देम एनी लेस, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू डू इन वॉर। Like in boxing, you never rate the opposing pugilist boxer any inferior to you. That makes you vulnerable. He must have had all the respect for his colleagues and counterparts in Pakistan Air Force. And very often that helps in outthinking them. अगर मैं ये होता तो उनकी जगह क्या करता, अगर ये करता तो मैंने उसके लिए क्या करना चाहिए. इट्स अ माइंड गेम. इफ यू कैन विन द माइंड गेम यू इवेंचुअली विन द वॉर.
पीसी लाल की खासियत थी उनका बेरहमी की हद तक ईमानदार होना. एयर मार्शल इनामदार बताते हैं कि उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की परिभाषा आम लोगों से बिल्कुल अलग थी.
ही टोल्ड मी अबाउट दिस व्हेन आई वाज अ स्क्वाड्रन कमांडर. दिस इज इनामदार, मतलब पता है आपका क्या है इंटीग्रिटी का. तो हमको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, टूटी फूटी उस समय थी. मैंने कहा कि ये सब इसका मतलब ये है. कहते नहीं, इसका मतलब ये है, इंटीग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट व्हेन नोबडी इज लुकिंग.
विंग कमांडर जाफा एक किस्सा सुनाते हैं जो बताता है कि पीसी लाल किस हद तक ईमानदार हो सकते थे.
मैंने अपनी जिंदगी में शायद इतना ऑनेस्ट और पर्सनली ऑनेस्ट कोई और नहीं देखा होगा. उनके साहबजादे का सामान जयपुर से दिल्ली आ रहा था और वो ट्रक गुड़गांव में इत्तेफाक से एयरफोर्स स्टेशन के बाहर ही खराब हो गई. इतने में एयरफोर्स स्टेशन से एक एयरफोर्स की ट्रक निकली तो इस सिविल के ड्राइवर ने हाथ देकर रोका, उससे कहा कि भाई ये आपके बहुत बड़े साहब चीफ साहब के घर जाना है ये सामान और मेरी ट्रक खराब हो गई है, तो अब आप बताइए अगर आप मदद कर सकते हैं. तो उस ड्राइवर ने कहा वैसे तो मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ और खाली जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे सामान लेकर लौटना है, मगर मैं पूछ लूँ. खैर वो बात गुड़गांव के स्टेशन कमांडर तक पहुँची और उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि ये किस्सा है, मैं सामान एयरफोर्स ट्रक में लदवा दिया है मैंने और मैं उसको भेज रहा हूँ. मैं चीफ साहब को तो इतला दे ही दूँ कि ये हुआ है. मैंने उनसे कहा कि साहब वैसे भी वो ट्रक खाली दिल्ली आ रही थी तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने उसी में सामान आ जाएगा. चुप रहे दो चार सेकंड, उसके बाद कहते हैं आपने डिसीजन तो ठीक लिया, बिल्कुल सही स्टेप आपने लिया है, वो एक काम और कर दीजिए कि स्टेशन कमांडर से कहिए कि उस ट्रक का गुड़गांव से दिल्ली तक का जो गवर्नमेंट व्हीकल का पर्सनल यूज के लिए जो चार्जेस हों उसका बिल बना के साथ में भेज दें.
1971 के युद्ध के दौरान कुछ इस तरह की खबरें आईं कि उनके और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बीच सब कुछ ठीक नहीं था. जनरल जे एफ आर जैकब अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में इस बात का जिक्र करते हैं. लेकिन इनामदार और जाफा दोनों मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो भारतीय सेना को 1971 में वो सफलता नहीं मिली होती जो उसे मिली. पीसी लाल जरूर अपनी आत्मकथा माई ईयर्स विद इंडियन एयरफोर्स में इस प्रकरण का जिक्र करते हैं.
1971 में मानेकशॉ ने जिस तरह से युद्ध को चलाया उससे लोगों को आभास मिला कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे. हम लोगों की दैनिक मीटिंग में उनका बर्ताव दोस्ताना और सहयोगपूर्ण होता था, लेकिन वो वायुसेना और नौसेना से कहीं अधिक जानकारी लेने की फिराक में रहते थे, जबकि अपनी सेना के बारे में वो बहुत कम जानकारी देते थे. वो वायुसेना से कहीं अधिक मांग करते थे, जिससे ये आभास मिलता था कि वो उसे अपने लक्ष्य के साधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे. लेकिन इसके बावजूद फील्ड मार्शल का पद पाने के वाहिद हकदार सैम मानेकशॉ ही थे. वो कड़ी मेहनत तो करते ही थे, उनके पास तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और परिस्थितियों की जटिलता को तेजी से समझने का गुण भी था.
रिटायरमेंट के बाद इंदिरा गांधी ने एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल को इंडियन एयरलाइंस का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया. वहां यूनियन के कड़े रवैये के कारण इंडियन एयरलाइंस में तालेबंदी तक की नौबत आ गई, लेकिन पीसी लाल की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठे.
उस समय कोई बातचीत थी कि यूनियन का काफी जोर था एयरलाइंस में, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, यूनियन एयरलाइंस नहीं चला सकती, ना यूनियन, ना ब्यूरोक्रेट्स, ना पॉलिटिशियन. जो काम सौंपा गया है कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कोई जवाब देना हो, कुछ गलती हो तो उनके पास. पर यूनियंस मानी नहीं और फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है दिसंबर महीने में, लॉकआउट किया कि सारी एयरलाइन बंद हो जाए जब तक ठीक ना हो. तो उसके तहत उन्होंने एक नया काम शुरू करवाया कि, और ये पहली बारी है, इसके बारे लॉस एंजलिस टाइम्स में भी बाद में एक आर्टिकल छपा था, कि आप एक एक जना अलहदा एक लाइन, आई एक्सेप्ट मैनेजमेंट्स राइट टू मैनेज. तो वो उन्होंने हरेक अफसर से, हरेक कर्मचारी से पूरी इंडियन एयरलाइंस में जब उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए उस पर एक एक ने अलहदा अपने नाम पे, तब उनको वापस लिया जाता था। किसी एयरलाइन की अगर उन्नति करनी हो तो उसमें कोई एक सोच की प्राथमिकता होती है, और वो उन्होंने कहा कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में आपको पता चल जाता है कि मेंटेनेंस कैसी चल रही है, क्रू कैसा आ रहा है, कैसे। तो वो उन्होंने शुरू किया, और हर रोज़ कई सालों तक मैंने देखा, हर रोज़ सवेरे घर पे, या उनके स्टाफ ऑफिसर एक थे, हर रोज़ सवेरे दफ्तर पहुंचने के पहले कि उस दिन सवेरे कौन सी फ्लाइट डिले हुई है और क्यों हुई है और किस एयरपोर्ट पे सारे देश में, ये बताना पड़ता था। और उसकी वजह से एक समय ऐसे आ गया था करीब 95-96 फ्लाइट्स हर रोज़ ऑन टाइम थी।
कई हलकों में ये चीज़ पसंद नहीं की गई जिस ढंग से पीसी लाल को अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर अपने पद से हटा दिया गया, खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा।
प्रताप को संजय गांधी ने इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष के पद से हटाया था। बाद में जब इंदिरा गांधी सत्ता से हट गईं, तो बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से उनसे और उनके परिवार से मिलने से कतराने लगे। मैं एक बार सूर्या पत्रिका पर चले केस के सिलसिले में मेनका गांधी के साथ सह अभियुक्त के रूप में कलकत्ता गया। मैं प्रताप के साथ ठहरा जबकि मेनका गांधी कमलनाथ के यहाँ रुकी। मुझे याद है मेनका ने मुझसे कहा था, लाल दंपत्ति हमसे नफरत करते होंगे। मेरा जवाब था, लाल किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। उसी शाम इला लाल ने मेनका को अपने घर पर चाय पर बुलाया और अपने प्रति किए गए संजय के व्यवहार का जिक्र किए बगैर बहुत प्यार और खुलूस से उनका स्वागत किया।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।